सितार की झनकार के साथ न सिर्फ एक संगीत में माहौल बन जाता है बल्कि तन मन जैसे डूब जाता है सुरों के सागर में। सितार की तारों में कैद हो सुर और साथ में हो एक सूफियाना गहरी आवाज तो लगता है जैसे सोने पर सुहागा हो गया है। हमारे संगीत की दुनिया में कई बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे जीवन में सुरों का प्रवाह ला देते हैं और ऐसा ही एक नाम है उस्ताद शुजात खान का। खान साहब सितार के इमदाद खान खराना से हैं और वो जाने जाते हैं अपने गायकी अंग सितार वादन कला के लिए। खान साहब को संगीत विरासत में मिला है। वो जाने माने सितार वादक उस्ताद इनायत खान के पोते और उस्ताद विलायत खान साहब के बेटे हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे संगीतमय माहौल में उस्ताद शुजात खान ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि आधुनिक तकनीकी और संगीत के तालमेल के साथ कई दूसरे कलाकारों के साथ कोलैबोरेट करते हुए कई आयाम हासिल किए हैं। उनकी म्यूजिक एल्बम द रेन जिसमें उनके साथ इंडो पर्शियन गजल एंसेंबल था 2004 में ग्रैमी अवार्ड के लिए उसका नामांकन हुआ। इस महीने उस्ताद शुजात खान साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आ रहे हैं तो आइए आज मुलाकात करते हैं इसी जाने माने सितार वादक संगीतकार गायक के साथ। खान साहब नमस्कार।
नमस्कार जी। नमस्कार
खान साहब। आप एक जाने माने संगीतकार के बेटे हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान है उसके साथ में लगा हुआ और कहीं कहीं वो बहुत भार भी बन जाता है जब आप किसी बहुत जानी मानी शख्सियत के बेटे हों या बेटी हों। तो कुछ जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो बड़ा नाम आपके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है उस्ताद विलायत खान जी का।
जी आप बिल्कुल सही कह रही है। इतने बड़े शख्सियत के बेटे होना या उनकी फैमिली से होना, उसके फायदे और मजे सब लोग देख सकते हैं, मगर उसकी तकलीफें और जो कंधे पे वो बोझ सारी जिंदगी रहता है
जी,
वो नहीं देख पाते। क्योंकि एक नॉर्मल तरीका होता है इंसान के सोचने का, सारी दुनिया आपको कभी कंपेयर करना नहीं बंद करेगी जैसे ही आपके गुरु का या आपके बाप का नाम सुने
जी।
तो बहुत अरसा निकल जाता है ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दुनिया में मैं कौन हूँ और मेरा म्यूजिक क्या है
जी।
जरूर उस्ताद विलायत खान का बेटा हूँ और उनकी गायकी बजाता हूँ, उनकी उनकी बाज बजाता हूँ
जी।
लेकिन मेरा अपना ख्याल और मेरा अपना म्यूजिक बहुत क्लियर है, जो लोग सुनते हैं वो समझते हैं
जी।
तो बहुत साल लगे मुझे इस्टेब्लिश करने में। डोंट वॉन्ट टू बी अ कार्बन कॉपी ऑफ उस्ताद विलायत खान
जी।
उनका बेटा जरूर हूँ लेकिन तो बिटर स्वीट है, कुछ तकलीफें भी है कुछ है, मगर बगैर तकलीफों के किसी की तो जिंदगी नहीं निकलती तो अच्छा है। मगर अच्छा लगता है, कई आर्टिस्टों को सारी जिंदगी लग जाती है वो जगह नहीं देते, कम अज कम मुझे लोगों ने एक अपनी जगह बनाने का मौका दिया है और एक्सेप्टेंस दी है।
कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सफलताएं हैं, ग्रैमी अवार्ड के लिए भी आप नॉमिनेट हुए हैं। आपकी जो ये संगीत में यात्रा थी, मैंने कहीं पढ़ा कि पहाड़ों के बीच में शुरू हुई, तो बचपन की कुछ बातें बताइए ना हमारे सुनने वालों के लिए।
हर चीज के पीछे इंसान जब लग पड़ता है
जी,
आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक वक्त मैं शिमला में पढ़ता था, मेरा स्कूल शिमला में था और एक जरूरी चीज होती है हिमालयाज में, ऐसे वातावरण में, ऐसे खूबसूरत वादियों में, पहाड़, पेड़ पौधे, रिवर्स, तो उसमें ऐसे भी इंसान का मिजाज और दिमाग बेहतर रहता है और एक लगन से आप उसके पीछे चल सकते हैं। दुनिया बात सीधी यह है कि कोई भी इंसान कहीं भी रहे, मेहनत तो उसको करना ही पड़ेगा। किसी का बेटा हो, किसी का स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा खानदान हो, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो विलायत खान साहब को तो साथ में लेके तो नहीं जाऊंगा ना
जी।
तो सबको समझना है कि अगर आप अपने मीडियोक्रिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जिंदगी में तो बहुत अच्छी बात है
जी,
कोई तकलीफ की बात ही नहीं है।
और
अगर आपको एक्सेल करना है किसी भी चीज में तो उसका इन्वेस्टमेंट आपको जरा ज्यादा देना पड़ेगा उसमें
जी,
उसका कोई रास्ता नहीं है।
बिल्कुल, और आप उसका जीता जागता उदाहरण हैं, क्योंकि एक इतने बड़े नाम की छाया में से बाहर निकलकर एक अपना अस्तित्व बनाना, और उसमें जाहिर है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी अपनी सोच ने ये साबित तो कर ही दिया है।
आंगन को पिया घर पिया घर
तो बंबई नगरी में भी पहुंचे हुए थे, और वहां भी आपने सिनेमा की दुनिया में भी आपने उन संगीतकारों के साथ काम किया, तो कि वो अनुभव कैसा था आपका?
बहुत अच्छा लगा, उस वक्त के लिए बहुत अच्छा था
जी।
मैं स्कूल खत्म करके निकला था, 18-19 साल की उम्र थी, तो उधर 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 अच्छा लगता था रह के, कि पैसे आसानी से कमा सकता था। म्यूजिक का मुझे शौक ही था पहले से
जी।
तो वो बड़ा अच्छा होता था, सब 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 कुछ एक एक वक्त के लिए अच्छा होता है
जी।
वाईबी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारना
जी।
और उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा टाइम था, लोग साथ में मिलते थे, आशा जी हैं, लता जी बैठी हैं, किशोर सा बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया, थोड़ा सा म्यूजिक किया, थोड़े से पुराने किस्से सुने। वो जो एक्सपीरियंस है वो अब नहीं होते, बिकॉज सब लोग घर पे ही काम कर लेते हैं, स्टूडियो में आते हैं 5 मिनट के लिए, अच्छा भाई जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करो, चलो मैं जा रहा हूँ। लोग बेहद टाइम बैठ के वो बहुत अच्छी तरह म्यूजिक को देखते थे, मगर एक कैमराडरी भी थी, एक इंसान लोग एक इंसानियत भी था, लोग खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पुराने किस्से चल रहे हैं
जी।
तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, उस वक्त के लिए जैसे मैंने बोला वो ठीक था
जी।
मगर मैं रियलाइज किया कि ये ठीक है, मगर क्लासिकल म्यूजिक जो चीज है, जो मेरा ट्रेडिशन और मेरा परंपरा है
जी,
जो 1-1.5-2 घंटे का एक बिल्डअप होता है एक राग का, जिसको सीखना है, उसको समझाना, एंड द प्लेजर ऑफ लाइव म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ सबके सामने उसी वक्त वो म्यूजिक उसी दिन के लिए रह जाता है
जी।
तो वो सबके साथ मिलके, आप लोगों की एनर्जी और मेरी एनर्जी साथ में मिलके बनती है, उसका जो मजा है
जी,
उसकी बात ही अलग है, वो 3-4-5-6 मिनट के गाने में नहीं आता
जी। वो तो बात है, क्योंकि वो संगीत जो है, जो आप उस समय जिसको आप बनाते हैं, वो जो हवाओं में जो सुर बिखेरते हैं, उन उसको महसूस किया जाता है
जी। जी मैं सुनता जरूर हूँ और बहुत शौक से सुनता हूँ अभी भी
जी,
मगर मुझे अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक अपने उसमें ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है
जी। और क्लासिकल म्यूजिक के अलावा आप, क्योंकि आप पहाड़ों ने अपने संगीत को परवान चढ़ाया कह सकते हैं, तो क्लासिकल संगीत के साथ साथ आपका झुकाव फोक म्यूजिक की तरफ भी रहा
जी। फोक का एक अलग रस्टिक एंड अर्ली एक फीलिंग है फोक म्यूजिक, देयर समथिंग वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फोक म्यूजिक होता है। हमारा म्यूजिक जो है ये बहुत रिसर्च, बहुत डीप, जिसको हम लोग फाइन आर्ट्स कहते हैं
जी।
फोक थोड़ा रॉ फॉर्म में होता है और उसका अलग ही मजा है, उसके देयर इज सम ग्रेट इनोसेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फोक। उसको इंसान को बहुत इनोसेंटली देखना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा उसका, मेरे को बिकॉज मैं पंजाब में, हिमाचल में बहुत रहा, यूपी में
जी।
और उधर के फोक म्यूजिक से बहुत मुतासर हुआ हूँ
जी,
तो वो एंजॉय करने लगा मैं, और लोगों को भी अच्छा लगता है कि एक पार्ट ऑफ माय कॉन्सर्ट में कुछ पुराना फोक अच्छा कुछ सुना सकूं, तो अच्छा लगता है। दैट इज जस्ट एक मेरा पर्सनल ओपिनियन
जी, वो एक अलग सुकून प्रदान करता है। बस चलते चलते आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि बीच में बात में कहा कि वो दौर बहुत ही अच्छा था, वो उस दौर के लिए सही था, तो जो अब संगीत में जो बदलाव आया है या उसके प्रेजेंटेशन में बदलाव आ गया है, तकनीकी में बदलाव आ गया है, तो उससे कहीं आप परेशान होते हैं क्या?
ना, बिल्कुल नहीं
जी।
वो क्या था, वो वक्त था जब मैं 18, 20, 22, 25 साल का था
जी।
तो मेरा नजरिया अलग था एंड देयर वर डिफरेंट थिंग्स दैट आई एंजॉय, और जो चीज मुझसे एसोसिएट होती थी लोगों के लिए वो अच्छा था। वही चीज अगर इंसान 50 साल की उम्र में करे
जी,
वो शोभा नहीं देता उनको।
अब
मैं इस उम्र में सुबह सितार उठा के स्टूडियो से स्टूडियो जा रहा हूँ, घूम रहा फिर रहा हूँ, इट इज नॉट व्हाट आई एनविजन माई लाइफ टू बी। मैं दुनिया भर में घूमू, लोगों को स्टेज पे अच्छे अच्छे स्टेजों पे जाके गाना बजाना करूँ, कार्नेगी हॉल में बैठ के गाना बजाना करूँ, रॉयल अल्बर्ट हॉल में, ऐसी जगह where there is extreme importance and respect given to our arts and culture.
जी,
ये नहीं कह रहा वो बुरी चीज है, वक्त के लिए अच्छी। तो अब मेरा अगली पीढ़ी है जो 20 साल के बच्चे हैं, 20 साल, उन लोग वो काम करें, उनका टाइम है, ये मेहनत करें, स्टूडियो से स्टूडियो में जाएं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, बहुत दफा मेरे पास कोई आते हैं कि भाई एक सितार का पीस बजा दीजिए शुजात भाई, या हमको ये गाने का जरा एक तर्ज बना दीजिए, तो सारे मेरे दोस्त हैं, मैं करता हूँ, आई एंजॉय इट। मगर मैंने बोला हर चीज
का अपना एक समय होता है, वो
जी एक बॉडी इंसान 15 साल की उम्र में करे तो 50 दफा गिरे तो ठीक है,
10
साल की उम्र में करेगा तो एक दफा गिरेगा तो 3 साल तो बिस्तरे में पड़ा रहेगा। हर चीज अपने वक्त
जी, मेरा जी बिल्कुल, मेरा एक्चुअली पूछने का आपसे मकसद ये था कि वो जो तकनीकी में इस समय बदलाव आया है, देखिए उस समय जैसे संगीत भी बनाया जाता था, अगर हम फिल्मों की ही बात करें तो बहुत लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, सब लोग वहां बैठते थे, और अब क्या है, अब जो संगीत है वो मशीनों में कैद हो गया है। तो मैं उस लिहाज से आपसे पूछना चाह रही थी।
आपकी बात समझा, I'm sorry, I transgress, तो अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट इज अ टाइम, जिन लोगों ने वो वक्त देखा ही नहीं है उनके लिए ये टाइम ठीक है
जी,
कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठो, म्यूजिक क्रिएट कर लो अपने मशीन्स पे
जी,
बाद एक दिन स्टूडियो में बैठो, अगर कोई रिदम का हिस्सा करना है भैया आधे घंटे में तुम कर दिया, वो पैच वर्क कर दिया, या सितार की चीज करनी है तुमने कर दिया, और वोकल उस पर स्टूडियो में बैठ के डाल दिया, बट द क्रिएशन ऑफ म्यूजिक इज ऑल डन सिटिंग एट होम ऑन कंप्यूटर्स और सिंथेसाइजर ऑन योर कीबोर्ड्स जो भी है। तो उन्होंने वो वक्त नहीं देखा कि एक जगह में आर डी बर्मन साहब बैठे हैं, आशा भोसले जी बैठी हैं, कुमार साहब बैठे, बाकी सब म्यूजिशियंस बैठे हैं, हंसी मजाक चल रही है, चाय पानी चल रहा है, एकदम से खबर आई कि भाई पास के स्टूडियो में दत्ता जी का अरे भाई उन्हें फोन करो, बहुत अच्छा खाना आया किसी के घर से, वो आ गए, अब सब बैठे हैं, मदन मोहन साहब आ गए, बैठे एक हंसी मजाक चल रहा है, देव सच लॉट ऑफ कैमरादरी, वो अपनी अपनी कोई कहानियां हैं, कुछ हसीन किस्से हैं, कोई मजाक तो हद से ज्यादा एक दूसरे के साथ, दूसरे लोगों के साथ, this whole era of this the connection, human connection
जी,
वो स्टूडियो में बैठ के आप म्यूजिक बनाएंगे, श्योर आप जरूर बनाइए, और बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक भी बनता है, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, मगर उस टाइम का जो द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग म्यूजिक क्रिएटेड फॉर अस गिव अस ग्रेट। अब आज के जमाने में आई एम नॉट सेइंग बुरी चीज है, हो सकता है आज के हिसाब से ठीक है विद द पेस ऑफ लाइफ, so the people who don't know of those beautiful times, they will not miss it.
जी.
For me, because I know that time and I don't have to sit in a studio unnecessarily sitting and making songs, then I shouldn't have to do it.
जी.
मेरा मतलब था कि एक वक्त का जिंदगी का जो progression इंसान की जिंदगी में,
जी.
One should accept that and understand gracefully and with dignity.
बिल्कुल, और जो आप कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरह से आप उस चीज़ को निभा रहे हैं, और आपकी यही सोच जो है कईयों के लिए उदाहरण भी है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी, क्योंकि यही सोच चाहिए आज की पीढ़ी को समझ पाना, और आप जो तालमेल बना रहे हैं उस समय के साथ और इस समय के साथ, क्योंकि आपने दोनों समय देखे और अपने आप को उसमें ढाल लिया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
I hope मैं जिस तरह मैं जिंदगी जीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी आने वाली पीढ़ी मेरी जिंदगी से कुछ प्रेरणा ले सके
जी,
कोई और उसके जिस तरह मैं जिंदगी जिया हूँ अगर वो कुछ उसमें से अच्छी चीजें निकाल के अपनी जिंदगी में जोड़ सके, इट्स अ हैप्पी थिंग
जी। हंस साहब, आपने ये जो समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सारे लिसनर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
बल बल खुसरों ने जान के बल बल जाइए सुहागन
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।